بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ التواب الرحیم ہے. تواب کے معنی متوجہ ہونے کے ہیں, مہربانی کرنے کے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے ہیں. اصل میں توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا, یعنی اگر آپ انحراف کر گئے تھے, آپ نے منہ موڑ لیا تھا, ناراض ہو گئے تھے تو واپس آ گئے, اصل معنی یہ ہے. لیکن پھر اسی وجہ سے کہ ناراضی کے بعد واپس آئے ہیں یا ہٹنے کے بعد واپس آئے ہیں تو اس میں پھر شفقت کا مفہوم, مہربانی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. تو توجہ فرمانا, مہربانی کرنا, گناہ معاف کرنا, یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. رحیم کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ رحمت سے ہے. رحمت کے اندر شفقت, مغفرت اور عدل کا مفہوم ہے اور اس کے اندر دائمی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. تو التواب میں بھی مبالغہ ہے, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور رحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے لیکن وہ دوام والا ہے, اس میں بھی جوش والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اب اگر اللہ تعالیٰ تواب نہ ہوتے تو یہ قاعدہ نہ رکھتے کہ میں اس گناہ کو مٹا سکتا ہوں, میں اس گناہ کو اپنے اعمال نامے سے مٹا سکتا ہوں. اگر یہ امکان اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو وہ تواب نہ کہلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم سے گناہ ہوں گے, اس کو پتہ ہے ہم کمزور ہیں, کبھی جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی ضروریات کا شکار ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اب اس گناہ کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خدائے تواب نے ہمارے لیے توبہ کا ایک قانون دیا, توبہ کا قانون دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکیں. اگر اللہ تعالیٰ توبہ کا قانون نہ دیتے اور گناہوں کو مٹانے کا حق نہ دیتے تو وہ گناہ ہمارے اعمال نامے میں دائمی طور پر لکھا جاتا, پھر قیامت والے دن ہی اس کا نتیجہ نکلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شفقت کی, توجہ کی ہمارے انحراف کے باوجود, اور ہمیں کہا کہ تم توبہ کر سکتے ہو. اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. اما ہوا اور آدم علیہ السلام دونوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, یہ شیطان کی باتوں میں آ کے اس درخت کو چکھ بیٹھے. تو اب جیسے ہی اس کیفیت سے نکلے جو پھل چکھنے کے معاملے میں تھی تو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے. فوراً آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اب میں کیا کروں, اس گناہ کو کیسے مٹاؤں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات, حضرت آدم نے توبہ کے کلمات سیکھے کہ اب میں اپنے گناہوں کو کیسے مٹاؤں. ظاہر ہے کہ یہ آئندہ کے لیے بھی طریقہ بن گیا. تو انہوں نے توبہ کے کلمات سیکھے. توبہ جو ہے وہ آگے چل کر ہم سورہ البقرہ کی اس آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تین پہلو بیان کیے ہیں, اس کو ہم سمجھ جائیں گے کہ توبہ آدم نے کیا سیکھا تھا. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. ان کی دعا بڑی مشہور ہے کہ اے اللہ ہم نے ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ الفاظ توبہ کرنے کے لیے سیکھیں یا اس کے ذریعے سے توبہ کی. تو یہ کلمات سے توبہ کی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتاب علی, تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پر مغفرت کرنے کے لیے متوجہ ہوئے, مہربانی کر دی, توبہ قبول کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے. یہی ہماری وہ دو صفات ہیں. یہ بتا چکا ہوں کہ دو صفات جب واو کے بغیر آتی ہیں تو یہ دو صفات مل کر ایک صفت بن جاتی ہیں. توبہ کن کی قبول ہوگی؟ جن کو خدائے رحمان کی صفت رحمان عدل کے مطابق معاف کرنا چاہے گی. یہ رحمت بتا, رحیم کا یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ رحمت کے تقاضے سے جو لوگ مغفرت کے مستحق ہوں گے ان کی توبہ قبول ہوگی. ہر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ جو جذبات میں یا جہالت میں گناہ کریں اور گناہ جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑیں اس جہالت سے نکل آئیں تو فوراً اگر توبہ کر لیں گے, پکی سچی توبہ جس کا آگے بیان آ رہا ہے, تو میں لازماً معاف کر دوں گا. اور جو مرنے تک توبہ کو ٹالتے رہیں گے, موت کے فرشتے دیکھ کر, موت کے آثار دیکھ کر توبہ کریں گے, ان کی توبہ لازماً قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو تواب الرحیم میں یہ بات رحیم کا لفظ بتا رہا ہے کہ توبہ کن کی قبول ہوگی, جو رحمت کے تقاضے سے عدل کے مستحق ہوں گے کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے. تو تواب اور رحیم, تواب کے اندر تو توبہ قبول کرنے کے معنی میں, یہ اگر صرف تواب کی صفت آ جاتی तो फिर इसका मतलब है हर किसी की तौबा कबूल होनी है, लेकिन साथ रहीम को जोड़ दिया तो अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ उनकी तौबा कबूल होगी जो खुदा के बनाए हुए रहमत के कायदे के मुताबिक मगफरत के मुस्तहिक होंगे। इसलिए मुनाफिकीन के लिए नबी सल्लम की तौबा भी कबूल नहीं की, दुआ भी, सिफारिश भी कबूल नहीं की गई। क्यों? क्योंकि वो रहमत के मुस्तहिक नहीं थे। तो जब रहमत का कोई मुस्तहिक नहीं रहता तो कोई तौबा कबूल नहीं होती। उसकी सबसे अच्छी मिसाल फिरौन की है, जब वो डूबने लगा दरिया में हज़रत मूसा के असा के जो रास्ता बनाया था उस पानी के अंदर, तो उसने कहा कि आमंतु बिरब्ब मूसा व हारून, मैं रब मूसा और हारून पर ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अलान, अब क्या फ़ायदा, अब तो तुमने मौत के फरिश्ते देख लिए हैं, तो अब इस मौके पर तुम रहमत के मुस्तहिक नहीं रहे हो। तो उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। हो सकता है वो दिल से कर रहा होता उस तब भी नहीं, क्योंकि अब वो मुस्तहिक नहीं रहा। कायदे कानून के मुताबिक उसकी रहमत का दायरा जितना था, जिस पर उस पर रहमत हो सकती थी, वो मौत के फरिश्ते देखने से पहले पहले था। तो इस तरह से तवाबुर रहीम दो लफ्ज़ मिलकर ये बता रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल होगी जो रहमत के तहत मुस्तहिक होंगे कि उनके ऊपर उनका गुनाह माफ़ कर दिया जाए। उसकी शर्तें मैंने बता दी कि दुनिया ही में तौबा करनी है, गुनाह के फौरन बाद करनी है तो लाजमन कबूल हो जाएगी। जो दुनिया में मरने से पहले पहले करेंगे उनके लिए गुंजाइश मौजूद है तौबा कबूल होने की, लेकिन जो मौत के फरिश्ते देख कर करेंगे, मौत के आसार देख कर तौबा करेंगे, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। सूरह अल-बकरा में एक और वाक्या हज़रत मूसा के हवाले से, उनकी कौम के हवाले से, जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, वो 54 आयत में बयान किया गया है। अब इसमें तौबा का एक और पहलू सामने आ रहा है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने रब से तौबा करो, हज़रत मूसा के हवाले से अपनी कौम को कहा उन्होंने, और उसके लिए तुम अपने लोगों को कत्ल करोगे जिन्होंने शिर्क किया है। ये याद रखिए कि रसूलों के ज़माने में जब इत्माम हुज्जत हो चुका होता है तो शिर्क की सज़ा सज़ाए मौत है। तो जो शिर्क को नहीं छोड़ता उसको सज़ाए मौत मिलती है, जैसा कि हज़रत मूसा के साथियों के हाथों से हुई, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हाथों से हुई, या आसमान से अज़ाब आ जाता है। दो सूरतों में लाजमन उनको कत्ल कर दिया जाता है इत्माम हुज्जत के बाद। तो हज़रत मूसा के इत्माम हुज्जत के बाद जब इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया तो तौबा का मौका दिया गया। जिन्होंने तौबा कर ली माफ़ कर दिया गया, जिन्होंने तौबा नहीं की उनके बारे में हुक्म हुआ कि उनको मार डालो, फ़क्तलू अनफुसकुम, और फरमाया कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे रब के नज़दीक, तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही बेहतर है कि अब तुम ये सज़ा नाफिज करो अपने लोगों में। अब देखिए तौबा कबूल करने के लिए क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। तो फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। क्यों? क्योंकि वो तवाबुर रहीम है, रहमत के तहत तौबा कबूल करता है। तो रहमत तकाजा कर रही है कि अब काफरों को सजा दी जाए। चुनाचे ये हुआ कि यहूद ने बाप ने अपने बेटे को मारा है, बेटे ने अपने बाप को मारा है, उसके बाद ये तौबा कबूल हुई। तो ये वो तौबा का कायदा है कि कायदे के मुताबिक, अदल के मुताबिक ही तौबा कबूल की जाएगी। तो तवाबुर रहीम का ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि खाली तौबा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो रहमत के कायदों के तहत तौबा कबूल होगी। सूरह अल-बकरा ही में 128 नंबर आयत में देखिए कि शरीयत के पहलू से भी यही अल्फाज आए हैं तवाबुर रहीम के। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हमारे रब हमें अपना मुसलमान फरमा बरदार बना ले, और हमारे औलाद में से एक उम्मत बरपा कर दीजिए, और हमें अपने मनासिक सिखाइएगा, अपनी इबादत के तरीके, हज के तरीके बताइएगा, और हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाइए, क्योंकि आप तवाबुर रहीम हैं। तो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल ने भी दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले हैं। अंबिया की बसीरत ऐसी ही होती है कि वो बड़े नपे तुले अल्फाज इख्तियार करते हैं। ये कुरान मजीद में जितनी दुआएं अंबिया की आई हैं वो भी, और जो नबी करीम सल्लम से हमें दुआएं मिली हैं उनमें भी ये शान नज़र आती है कि वो नपा तुला अल्फाज का चुनाव होता है। तो उन्होंने मांगा क्या क्या है, ये कि खुद अपने दोनों के लिए उन्होंने कहा कि हमें अपना फरमान बरदार बना लीजिए, हमारी औलाद में से एक उम्मत उठाइए जो मुसलमान उम्मत हो, और हमें मनासिक सिखाइएगा कुर्बानी हज के, और हम पर मेहरबानी फरमाते रहिएगा, तौबा कबूल करते रहिएगा, क्योंकि आप तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। तो इससे ये बात आप समझ रहे होंगे कि खुदा से जब इतनी चीज़ें मांगी हैं उसमें मांगा क्या है, फरमाबरदारी मांगी है, शरीयत मांगी है, तो ये खुदाए रहमान तवाबुर रहीम की तरफ से मिलेगी कि हमारी कोताहियों को माफ़ कर दीजिए, शरीयत दीजिए ताकि हम उस पर अमल करके कामयाब हो जाएं। तो इस सारी के पीछे तौबा का एक अमल था कि अपनी पुरानी शरीयत छोड़नी है, पुराना दीन छोड़ना है, पुरानी रवायत छोड़नी है, तो ये तौबा हुई हमारी तरफ से कि हमने अपना बनाया हुआ दीन छोड़कर अल्लाह का दीन कबूल कर लिया, तब हमें तवाबुर रहीम से तवक्को है कि वो हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। तो बहुत ही नफासत के साथ दोनों बुज़ुर्गों ने तवाबुर रहीम की सिफत का यहाँ इस्तेमाल किया। आगे जो सूरह अल बकरा की 160 आयत है, इसमें देखिए कि अल्लाह ताला ने तौबा के तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू। ये बात ही हक छुपाया जा रहा था, हक को छुपाया जा रहा था तो उसकी वजह से बय्यना को लफ्ज़ बोला। तो अब क्या कि तौबा करें, अपने मामले की इसलाह करें और जो हक छुपा रहे हैं उसको बयान करें। इसको हम असूली शक्ल दे देते हैं। तौबा करने का मतलब है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये इसलाह हो गई, और जो गलती कर ली है उसको दुरुस्त कर दें, तलाफ़ी कह लीजिए। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जिन जो रहमत का तकाजा, तवाबुर रहीम में जो लफ्ज़ रहीम है उसका तकाजा है कि तीन एलिमेंट्स हर तौबा में पूरे होने चाहिए। पक्की सच्ची खुदा से माफ़ी, जिस गुनाह में पड़े हैं उस गुनाह को छोड़ने की कोशिश, और जो गुनाह कर लिया है उसकी तलाफ़ी। इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए, मैंने आपकी जेब से 10 रुपये चुराए, अब मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ, सिर्फ ताबू वाली तौबा कबूल नहीं होगी जब तक कि मैं अपनी इसलाह का इरादा ना करूँ कि आइंदा मैं चोरी नहीं करूँगा, और उस वक्त तक तौबा कबूल नहीं होगी जब तक मैं 10 रुपये आपको वापस आपकी जेब में ना डालूँ, या कम अज़ कम आपसे माफ़ ना करवा लूँ कि मैं गलती से या चोरी से आपके 10 रुपये ले गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं वापस नहीं कर पा रहा। तो ये तीन काम करने पड़ेंगे। एक पॉजिटिव मिसाल ले लीजिए कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी आज ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, तो अब क्या करना है, तौबा करूँगा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ठीक, आइंदा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, बाकायदगी से पढ़ूंगा, ये इसलाह हो गई, और जो नमाज रह गई है उसकी कज़ा अदा करूँ, ये बय्यनू हो गया। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जो तौबा में आपको करने हैं। इसके बाद फरमाया ओलाई का अतूब अलैह, इनके ऊपर मैं तौबा करता हूँ, इनकी तौबा कबूल करता हूँ, इनके ऊपर मेहरबानी करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तवाबुर रहीम। तो अब कानून अगर आपने पूरा नहीं किया, एक सूरह निसा वाला मैंने जो बताया कि अगर आप मरने तक नहीं टालते, फौरन तौबा करते हैं तो लाजमन कबूल होगी, ज़िंदगी ही में कर लेते हैं तो उम्मीद है तौबा कबूल होगी, लेकिन अगर हम मौत तक टाल देते हैं तो तौबा कबूल नहीं होगी। इसी तरह ये कायदा दूसरा यहाँ बयान हुआ है कि तीन एलिमेंट्स हैं तौबा के, अल्लाह से माफ़ी मांगना, इस्लाह की कोशिश करना, और तीसरा ये कि जो काम गलत हो गया है उसकी तलाफ़ी कर देना, उसको कंपनसेट कर देना। तो फरमाया कि मैं तवाबुर रहीम हूँ, इसलिए इन लोगों पर तौबा का मेहरबानी करूँगा जो ये तीन काम करेंगे। तो चूँकि यहाँ कितमान हक हो रहा था तो कितमान हक को बय्यनू के लफ्ज़ से बयान कर दिया। उसके बाद सूरह तौबा की आयत देखिए, ये भी क्या बात है, इससे भी आपको तवाबुर रहीम का एक पहलू समझ में आएगा। फरमाया कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल करता है अपने बंदों से, और सदकात भी कबूल करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तवाबुर रहीम है। अब यहाँ तौबा का एक और पहलू सामने आ रहा है, और अल्लाह ताला की तरफ से तवाबुर रहीम का जो शफकत है वो भी नुमाया हो रही है कि वो किस नौयत की है। तो फरमाया कि ये मायूस क्यों हो रहे हैं, क्यों कुफर की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बढ़ें, क्या ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला तौबा को अपने बंदों की तरफ से कबूल कर लेता है और सदकात को भी कबूल कर लेता है। जो सदकात हैं ये बुराइयों की तौबा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कफ़ारे के तौर पर मसलन, या तौबा के लिए हम अपने तरफ से कुछ चीज़ अल्लाह की राह में दे देते हैं। तो तौबा का एक होता है कि हमने ये तीन शर्तें पूरी कर दी, तौबा की, इसलाह की, और उसकी तलाफ़ी भी कर दी। लेकिन एक और चीज़ हमारे पास है कि अगर हमने मज़ीद तसल्ली चाहते हैं कि हमारी तौबा हो जाए, अच्छी तरह कबूल हो जाए, तो उसके साथ कोई नेकी भी कर दें। तौबा खाली खाली तौबा ना करें, 2 रकात नमाज पढ़ के करें, अल्लाह की राह में कोई खैरात करके करें, तो ये भी तौबा का एक हिस्सा है। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قربانی وہیں کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہ مکہ میں جاتے اور وہاں جا کر قربانی کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی مامور، مجھے یہی حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ گستاخی کر لی ہے. انہوں نے ساری زندگی دو رکعت نماز پڑھ کے اس کے اوپر توبہ کرتے رہے. تو اس طرح سے جو بندہ مومن ہے، حالانکہ سادہ سوال کیا تھا، کوئی گستاخی کی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو دل میں بات کھٹک گئی. تو اس طرح سے جو یہ توبہ کے معاملہ ہے، اس میں خدا کی طرف سے جو مہربانی ہے وہ یہ کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ ہماری نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہم توبہ کی غرض سے کرتے ہیں. تو یہ خدا کی مہربانی ہے کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے. تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو دوبارہ مختصر طور پر بتا دوں کہ تواب الرحیم دونوں لفظ مل کر ایک ہی صفت بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو رحمت کی وجہ سے مغفرت کے مستحق ہوتے ہیں، معافی کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے دو قاعدے بیان کر دیے ہیں، ایک سورہ النساء میں اور ایک سورہ البقرہ میں. اس طرح کی آیتیں اور بھی جگہوں پر آئی ہیں. تو اس سے جو قاعدہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم مرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، اس کے قبول ہونے کا امکان ہے. عمل گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیں پکی سچی، تو لازمی طور پہ توبہ قبول ہوگی. جو موت کے وقت تک ٹال دیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور توبہ ان کی قبول ہوگی جو یہ تین شرطیں پوری کر دیں گے، اور مزید یہ کہ اس کے ساتھ صدقات دے کر اپنی توبہ کو مزید طاقتور کر دیں گے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوگی اور ان کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.